नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में नई सरकार भारत के साथ हुए कारोबारी समझौते का समर्थन करती है और इस समझौते को मंजूरी दिलाने के लिए वो जल्द ही संसद का रुख करेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अप्रैल में भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर हुए थे। इसे ऑस्ट्रेलिया के संसद से मंजूरी मिलने के बाद लागू किया जा सकेगा। गोयल ने पीटीआई भाषा से कहा, मैंने डोन फारेल से मुलाकात की है, वो ऑस्ट्रेलिया की नई सरकार में व्यापार मंत्री हैं। उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि ECTA को जल्द ही संसद में ले जाया जाएगा। वो इस समझौते का समर्थन करते हैं और आने वाले समय में भारत के साथ सरोकार और बढ़ाना चाहते हैं। इस समझौते से भारत के कपड़ा, चमड़ा, फर्नीचर, आभूषण और मशीनरी समेत करीब 6,000 क्षेत्रों को ऑस्ट्रेलिया के बाजार में शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। गोयल ने पहले कहा था कि ये समझौता द्विपक्षीय व्यापार को मौजूदा 27.5 अरब डॉलर से बढ़ाकर अगले 5 वर्षों में 45 से 50 अरब डॉलर तक पहुंचने में मददगार होगा। प्रवर्तन निदेशालय ने विदेशों में संपत्ति अर्जित करने और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम का उल्लंघन कर विदेशी लेनदेन करने के आरोप में कर्नाटक के एक निवासी की 17.34 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। संघीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि मैंगलुरु के निवासी के मोहम्मद हारिस के 2 मकान और एक औद्योगिक भूखंड को जब्त कर लिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने आरोप लगाया कि हारिस ने फेमा 1999 की धारा 4 का उल्लंघन करते हुए अजमान संयुक्त अरब अमीरात में एक फ्लैट हासिल किया, विदेशों में बैंक खाते खोले तथा निवेश किया और संयुक्त अरब अमीरात में एक विदेशी व्यापार इकाई में उसके करीब 17,34,80,746 रुपए के शेयर हैं। एजेंसी ने कहा कि अधिनियम की धारा 37(a) के अनुसार भारत के बाहर विदेशी मुद्रा, अचल संपत्ति आदि के इस कानून का उल्लंघन करके हासिल करने का संदेह होने पर प्रवर्तन निदेशालय भारत के भीतर उतनी ही कीमत की उस आरोपी व्यक्ति की संपत्ति जब्त कर सकता है। एजेंसी के अनुसार कुल 17.34 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई है। सोशल मीडिया मंच ट्विटर ने कहा कि उसने अरबपति उद्योगपति एलॉन मस्क पर 44 अरब डॉलर में कंपनी का अधिग्रहण पूरा करने का दबाव बनाने की खातिर मुकदमा किया है। मस्क ने फर्जी खातों की सही जानकारी नहीं देने का आरोप लगाते हुए ट्विटर को 44 अरब डॉलर में खरीदने के समझौते को रद्द करने की घोषणा की थी। वहीं दूसरी ओर ट्विटर ने कहा था कि वो इस सौदे को बरकरार रखने के लिए टेस्ला के मुख्य कार्यपालक अधिकारी मस्क पर मुकदमा करेगी। ट्विटर के निदेशक मंडल के अध्यक्ष ब्रेट टेलर ने मंगलवार को ट्वीट करके बताया कि एलॉन मस्क को उनके अनुबंध दायित्वों के लिए जवाबदेह बनाने के लिए डेलावेयर कोर्ट ऑफ चांसरी में मुकदमा दायर किया गया है। इसमें आरोप लगाया गया है कि मस्क ने ट्विटर और उसके शेयरधारकों के प्रति दायित्वों का सम्मान नहीं किया, क्योंकि जिस अनुबंध पर उन्होंने हस्ताक्षर किए थे उससे उनके निजी हित अब सध नहीं रहे थे। मस्क ने बीते शुक्रवार को कहा था कि कंपनी ट्विटर के फर्जी खातों की संख्या के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं दे सकी, जिसके चलते उन्होंने ये सौदा रद्द किया है। खुदरा मुद्रा स्फीति में नरमी आने और घरेलू शेयर बाजार में तेजी के चलते रुपया बुधवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले सपाट खुला। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की मजबूती और विदेशी पूंजी की निरंतर निकासी की वजह से निवेशकों ने शुरुआती कारोबार में सतर्क रुख अपनाया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 79.55 पर मजबूत खुला, लेकिन बाद में घरेलू मुद्रा ने 79.53 से 79.60 के दायरे में कारोबार किया। रुपया शुरुआती सौदों में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 79.58 पर कारोबार कर रहा था, जो पिछले बंद भाव के मुकाबले 1 पैसे की बढ़त को दर्शाता है। रुपया पिछले सत्र में डॉलर के मुकाबले 79.59 के अपने नए निचले स्तर पर बंद हुआ था। इस बीच 6 प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.12% बढ़कर 108.20 पर पहुँच गया। वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड वायदा 0.29% की बढ़त के साथ 99.78 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर था। शेयर बाजार के अस्थायी आंकड़ों के मुताबिक विदेशी संस्थागत निवेशकों ने मंगलवार को शुद्ध रूप से 1,565.68 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। एशियाई बाजारों में तेजी के रुख के चलते बुधवार को शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 324.61 अंक चढ़ गया। निफ्टी भी बढ़त के साथ खुला। इससे पहले दो दिन तक घरेलू शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई थी। इस दौरान 30 शेयरों वाला BSE सूचकांक 324.61 अंक बढ़कर 54,211.22 पर पहुंच गया। दूसरी ओर NSE निफ्टी 81.3 अंक चढ़कर 16,139.60 पर था। सेंसेक्स में हिंदुस्तान यूनिलीवर, एशियन पेंट्स, बजाज फिनसर्व, पावर ग्रिड, लार्सन एंड टुब्रो और बजाज फाइनेंस बढ़त दर्ज करने वाले प्रमुख शेयरों में शामिल थे। दूसरी ओर HCL टेक्नोलॉजीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज और HDFC बैंक में गिरावट हुई। अन्य एशियाई बाजारों में टोक्यो, सियोल, शंघाई और हांगकांग के बाजार हरे निशान में कारोबार कर रहे थे। अमेरिकी बाजार मंगलवार को लाभ के साथ बंद हुए। पिछले सत्र में 30 शेयरों पर आधारित BSE सेंसेक्स गिरावट के साथ खुला और अंत में 508.62 अंक यानी 0.94% लुढ़क कर 53,886.61 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 157.70 अंक यानी 0.97% की गिरावट के साथ 16,058.30 अंक पर बंद हुआ। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 0.27% की बढ़त के साथ $99.75 प्रति बैरल पर आ गया। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।